वो रास्ते की रुकावटें हैं जो इन अगली चंद आयतों में हम देखेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो अपने बापों और भाइयों को अपना रफीक ना बनाओ अगर वो ईमान पर कुफर को तरजीह दें। ये क्या मशवरा दिया अल्लाह ने कि बाप और भाइयों को ईमान पर रफीक ना बनाओ अगर वो कुफर में है। आज ये जुमला आप किसी को अपने लफ्जों में बोले कहेंगे खून सफेद हो गया तुम्हारा, सिला रहमी नहीं पता, कतअ रहमी क्या नहीं पता, ये देखो ये दीन पढ़ के कैसी बातें करते हैं। हालांकि अल्लाह ताला कहते हैं तुम में से जो इनको रफीक बनाएंगे वही जालिम होंगे। ए नबी कह दो, अब यहां से आप अपनी उंगलियों पर गिनते जाइए कितने अल्लाह ताला ने रिश्ते गिनाए हैं या कितनी मनपसंद चीजें जो मेरी और आपकी हैं उनको गिनाया। अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे अजीज अकारिब और तुम्हारे वो माल जिनके मांद होने का तुमको खौफ है और तुम्हारे वो घर जो तुमको पसंद है तुमको अल्लाह और उसके रसूल और उसकी राह में जिहाद से अजीज तर है, तो फतरब्बसू, तो इंतजार करो किस बात का, हत्तयातियल्लाहु बिअम्रिही, यहां तक कि अल्लाह अपना फैसला तुम्हारे सामने ले आए। तो अल्लाह का फैसला तो लिखा हुआ है और वो क्या है, वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह तआला फासिकों को हिदायत नहीं देता। क्या इस आयत की तफसीर की जरूरत है? क्या मेरी और आपकी कहीं भी डोरी इन्हीं चीजों के साथ तो नहीं बंधी? देखिए आठ मोहब्बतें पेश की हैं इस एक आयत में, पांच रिश्ते हैं इंसानी और तीन बेजान चीजें हैं जिसमें सबसे बड़ा हमारा इशू हमारा घर और हमारी तिजारत। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम जान कटाओगे, ये दूर की बात है। अब जो जुमला बोलूंगी इसको गौर से सुनिए और लिखने की कोशिश कर ले। जान देते हो बहुत अच्छी बात है, जिहाद हम कहते हैं बिल माल बिल कलम बिल फला, ये जज्बों के जिहाद की बात है। अल्लाह ताला कहते हैं मोहब्बतों का जिहाद करो। अब ये क्या करें, ये क्या समझ नहीं आती, ये होता क्या, तो समझ लीजिए कि एक इंसान की जिंदगी में अक्सर दो तकाजे होते हैं। एक तरफ अल्लाह और उसके रसूल या उसके दीन की कमिटमेंट का कोई तकाजा होता है, दूसरा उसका तकाजा उसकी जाती जिंदगी का, ठीक है ना। जैसे हम सब हैं, हमारे घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां हम पे, हमें खिलाना भी है पकाना भी है घर साफ भी करने है बच्चों को भी पालना है। इसी तरह अगर आप यहां दीन सीखने आ रहे हैं या वॉलंटियर कर रहे हैं तो आपके ये दो तकाजे हैं। आम हालात में ये सब चलता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अल्लाह ताला हमें चंद दिन में यूज टू कर देता है, हम अपने टाइम को मैनेज करके ये कर लेते हैं, उसमें नहीं पता चलता। लेकिन कोई एक दिन ऐसा आ जाता है कि जिस दिन ये दोनों तकाजे टकराने लगते हैं, एक ही वक्त पे दोनों की तलब है। आप सोचिए ना कि दीन भी पुकार है तो दुनिया भी पुकारे, कभी शौहर का तकाजा है तो साथ ही दीन का तकाजा है, कभी बच्चे की खुशी है तो उधर अल्लाह की बात है, कहीं घर आपसे कुछ डिमांड कर रहा है तो उधर आपकी बात है। ऐसे वक्तों में आप मुश्किल में पड़ जाते हैं, ये ऐसे वक्तों की बात है। वही रब हमें तो खुद सिखाता है कुलकुले बात पूरे करो, वही रब तो कहता है तहूर शत्रु ईमान सफाई निस्वीमान है, वो तो खुद कहते हैं शौहरों की खुशी में अल्लाह की खुशी है। अगर शौहर अल्लाह को खुश करने वाले हैं नेक है तो तुम उनको खुश करो, लेकिन जब दो में से टाई पड़ जाए तो किसको चूज करते हो? तीन सेकंड तक गौर कर ले, जब कोई ऐसा मामला आता है किस चीज को पीछे करके किसको पकड़ती हो। और मैंने देखा यही वो वक्त होता है जब लोग कहते हैं सॉरी वी कैंट गो मोर, कितने सालों का वॉलंटियर होता है सिर्फ किसी ऐसे लम्हे में वो पकड़ के हाथ आपके आपको चाबियां पकड़ा के निकल जाते हैं, और वो भी आपको पकड़ा दें बड़ी बात है, किसी के हाथी भेज दें तो बड़ी बात है, सॉरी इससे आगे नहीं जा सकते, मेरे से और लड़नी बर्दाश्त होती, मैं और बातें थी, मैं और लोगों के बिगड़ते हुए मजाज नहीं समझ सकती। और देखिए अगर आपकी कोई ऐसी वाकई मजबूरी है कि आपका घर टूटेगा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन इसको अवधि फैसला नहीं बनाना। बाज लोग इन छोटी छोटी बातों को बुनियाद बनाकर एक छोटा सा घर तो बचा लेते हैं लेकिन उम्मत को गिरा देते हैं। अगर आपका कभी दीन के साथ ताल्लुक रहे किसी जगह को बनाने संवारने में, कई ऐसे मौके आपके आए होंगे कि आप खड़े रह जाते हैं कि अब करें तो क्या करें, अब इस वक्त किसको फोन करके बुलाऊं, ये इतने बच्चों को किधर कौन संभाले, ये इस वक्त कैंटीन कौन संभालेगा, ये रिसेप्शन पे कौन आएगा, तो ऐसे वक्त कौन से होते हैं। अक्सर साथियों को कहती हूँ जो स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनके मुंह से भी अब ये जुमले सुने रीकैप्स में तो उनको तो याद हो गए। आम हालात की नेकियों में जो भी हम करते हैं माशाल्लाह, यानी आप कह लें कि विद गुड कंडीशंस जब हम नेकियां करते हैं ना तो उसे अजर मिलता है, उससे अल्लाह के पास रिवॉर्ड आता है, लेकिन मुश्किल हालात की नेकियों से ईमान मिलता है। काम तो कोई भी कर लेगा, अल्लाह के बंदे बहुत सारे हैं, कभी कोई कुर्सी खाली नहीं है। मैं आज ना आती इंशाल्लाह आप मेरे से भी अच्छे किसी से भी सुन लेते। लेकिन मुश्किल हालात में हम अल्लाह को चुपके से दिखाते हैं। ये वो नेकी है जिसका जिक्र शुरू के पारों में किया था, ऐसी किसी नेकी को फिर करे और आंखों में आंसू हो तो ऊपर आसमान की तरफ नजरें लगा के कि अल्लाह इसको मेरे अकाउंट में कहीं क्रेडिट बना के डाल दे, जब मौका पड़ेगा इसको कैश कराऊंगी। ये वो नेकी है जिसको वसीला बना सकते हैं, और वल्लाह ही अल्लाह आपके दुनिया के भी काम इसके साथ कर देगा, और इसके बाद अल्लाह सुबहाना तला आपके आखिरत के काम तो जो करेगा, क्योंकि अल्लाह को अजर देना बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह की जात इंसान का अजर जाया नहीं करती, अल्लाह तला की जात इंसान से बहुत मोहब्बत करती है। इसीलिए अब इस आयत के बाद अगली आयतों में एक वाक्य का जिक्र है, गजब हुनैन तबुक के सफर से कुछ पहले का वाक्य था। आम दिनों के या आम गजवात के बरक्स ये वो गजवा था जिसमें मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा थी, 12,000 के करीब मुस्लिम थे। वो जब पैदा हो गया कि अब तो हम बहुत इस्टेब्लिश्ड हो गए माशाल्लाह, पहले तो हम थोड़े थे अब तो हम हजारों में आ गए, पहले चंद गिनती के थे अब सैकड़ों नहीं हजार, और अब तो हसलियां भी बहुत है, अब तो अल्लाह ने हमें ये भी दिया वो सिस्टम भी हमारे पास है। बस जू ही एक बंदे के अंदर अपनी जात पे भरोसा आया, अल्लाह ने झटका दे दिया, ऐसी जबरदस्त किस्म की हालत पैदा हो गई कि मुसलमान को शिकस्त होने लगी। हुनैन की जंग में तीर अंदाजों ने हमले किए, मुसलमानों को परेशान होने लगे, लेकिन उसके बाद जब उनको होश आई, नहीं अल्लाह सॉरी, हम अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे, हम अपने लोगों की कसरत को नहीं देख रहे, हम अपने वेपन्स और अपनी तैयारियों को नहीं देख रहे बल्कि तुझे देख रहे हैं, तो अल्लाह ने फतह में बदल दिया। आइए इसको देखते हैं। लकत नसरकुमुल्लाहु फी मवातिन कसीरा, अल्लाह इससे पहले बहुत से मौके पर तुम्हारी मदद कर चुका है। अभी गज़वे हुनैन के रोज इसकी दस्तगीरी की शान तो तुम देख चुके हो। उस रोज तुम्हें अपनी कसरत तादाद का गर्वा था मगर वो तुम्हारे कुछ काम ना आई, और जमीन अपनी वसत के बावजूद तुम पर तंग हो गई और तुम पीठ फेर कर भाग निकले। फिर अल्लाह ने अपनी सकीनत अपने रसूल और मोमिनीन पर नाजिल फरमाई। नोट कीजिए, सबसे पहली नेमत जो मैदान जंग में मिली वो फतह नहीं थी, सकीनत थी, क्योंकि मुश्किल हालात इमरजेंसी हालात में इमरजेंसीज में एक लीडर अगर मुतमईन रहता है ये सबसे बड़ी अल्लाह की नेमत होती है। और फिर मोमिनों पे भी उसका असर हुआ। वंसल जनूद अलम तरहा, और वो लश्कर उतारे जो तुमको नजर ना आते थे, और मुनकरी ने हक को सजा दी कि यही बतला है इन लोगों के लिए जो हक का इनकार करें। फिर तुम ये भी देख चुके हो कि इस तरह सजा देने के बाद अल्लाह जिसको चाहता है तौबा की तौफीक भी बख्श देता है, और अल्लाह ताला दरगुजर करने वाला और अहम फरमाने वाला है। क्या पता चला, एक झटका देकर अल्लाह ने बहुत बड़ी बात सिखा दी कि हर दौर में हमेशा अल्लाह पे नजरे लगाना और ये ना सोचना कि ये मेरा है। देखिए पिछली आयतों में मोहब्बतों की बात थी, अब यहाँ फतह की बात है। तो अल्लाह ताला क्या चाहते हैं? अल्लाह सुभान तआला ये चाहते हैं कि तुम अल्लाह के साथ ताल्लुक में इतने संजीदा हो जाओ, लोगों के साथ मामला करते वक्त तुम्हें क्या फील हो कि ये सब मोहरे हैं। देखिए काम कोई भी तनहा नहीं होता, मशीनें भी लगती हैं इंसान भी लगते हैं, लेकिन इन पर रिलाय नहीं करना। बाज लोग कहते हैं फलाना आएगा तो काम ही नहीं होगा, कंप्यूटर आज नहीं होगा तो काम नहीं होगा, ये ट्रस्ट हो जाता है। बस इनसे मोहब्बत करो, यानी कह लीजिए कि इनकी हुब हो अहब में ना बदले। जब हमारा अंधा एतमाद अपने रिसोर्सेज पे हो जाता है तो फिर मसला हो जाता है, और ऐसे लोगों को फिर अल्लाह ताला खुद ही ऐसे झटके दे के सिखा देता है कि अल्लाह डजंट नीड यू, अल्लाह को तुम्हारी जरूरत नहीं तुम्हें जरूरत है, अपना इवेल्युएशन खुद कर लो। ये वो मोमिन है कि जिन्होंने खुद को अल्लाह के रास्तों में लगाया, थोड़ी बहुत झटका आया लेकिन अल्लाह ने मदद कर दी। और इससे ये भी पता चलता है कि मोमिन मुश्किल से मुश्किल हालात में भी मुतमईन रहता है, और अल्लाह ताला हमें आजमाइशों से बचा के रखे। फिर उसके बाद अगली आयतों में फरमाए, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, इन्नमल मुश्रिकून नजस, मुश्रिकीन नजस हैं, लिहाजा इस साल के बाद जब मस्जिद हराम के करीब न पटके, वही जिस मौजू से सूरत शुरू हुई थी यहाँ आ गई, अब मुद्दत खत्म हो गई, अब इनका वीजा खत्म हो गया, अब इनको यहाँ आने की इजाजत नहीं है। वजह क्या है? और अगर तुम्हें तंग दस्ती का खौफ है तो बईद नहीं कि अल्लाह चाहे तो तुम्हें अपने फजल से गनी कर दे, अल्लाह अलीम और हकीम है। या फिर एक बड़ा नुकता है, कोई एक आयत आगे जाने ही नहीं दे रही। वल्लाही सूरह तौबा इतनी एनरिच्ड सूरह है कि एक एक आयत पर एक एक दर्स दिया जा सकता है, पूरे यकीन से आपको कह सकते। आप एक साल का कोर्स सिर्फ सूरह तौबा का करवा लें तो वो भी इज क्वाइट पॉसिबल। हुआ क्या कि जब मक्का वालों मक्का में मुशरिकीन का दाखिला रोका गया सूरत के शुरू में पढ़ा, तो सहाबा या कुछ मुसलमानों के दिल में ख्याल आया कि जब अगले साल हज के मौके पे कुफार आएंगे नहीं तो लोग कम हो जाएंगे, कम आएंगे तो हमारी सैलरी रुकेगी, हमारी सेल कम होगी, क्योंकि हज का मौका उनकी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा ऊपर ले जाता था। पूरे साल की कमाई वो हज और उमरे के दौरान कर लिया करते थे। तो इसका अल्लाह ने जवाब दिया कि तुम सोचते हो कि मुशरिक तुम्हारी दुकान पे आके गंदी चीजें नहीं खरीदेंगे, तो तुम्हारी दुकान में बरकत नहीं, काम नहीं। अल्लाह कहता है डोंट वरी, अल्लाह देगा। आज यही फिक्र हर उस मुसलमान भाई बहन को है कि जिनके कारोबार तो हलाल है लेकिन उसमें कोई एक आधी चीज ऐसी पड़ी हुई है कि जो सारे माल को नापाक कर रही है। पूछा जाए तो कहते हैं अगर ये निकाल दी तो फिर तो ग्राहक नहीं आएंगे, ये ना मिलेगा तो कस्टमर नहीं आएंगे, और दिस एंड दैट। और जब लोगों ने निकाल के देखा, पहले उस स्टोर की कमाई 10,000 की थी, बरकत कोई नहीं थी, वो निकाल दी, मान लीजिए कि कमाई 3-4 हज़ार रह गई लेकिन बरकत बहुत है। ये अल्लाह ताला का फैसला है, और अल्लाह ताला थोड़े हलाल पे राजी करके कसरत हराम से हम सबको बचा ले। जंग कर अहले किताब में से इन लोगों के खिलाफ जो अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान नहीं लाते, और जो कुछ अल्लाह और उसके रसूल ने हराम करार दिए इसको हराम नहीं करते, और दीन हक को अपना दीन नहीं बनाते, इनसे लड़ो यहाँ तक कि वो अपने हाथ से जिजिया दें और छोटे बनकर रहें। अब एक मुस्लिम मुल्क में नॉन मुस्लिम कैसे रहे, जिजिया बनकर जिजिया देगा। जैसे किसी भी मुल्क में आप मिनोरिटी में होते हैं तो आपकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, इसी तरह एक मुसलमान मुल्क में नॉन मुस्लिम्स के रहने की कुछ लिमिटेशंस हैं, छोटे बन के रहें। आज आप देखिए कि मुसलमान इस पर परेशान है। हालांकि आप देखिए कि जब ये बातें आती तो लोग कहते हैं हाँ देखो कैसे कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये छोटे बन के रहें, इनको इज्जत ना दो। हालांकि आप किसी भी मुल्क में देखिए, अमेरिका की बात कर लीजिए, आप अमेरिका में रह रहे हैं इस वक्त, आप पाकिस्तानी बेस थे, पहले इंडियन थे, अब आपको अमेरिकन नेशनैलिटी मिल चुकी, लेकिन आप कभी इस मुल्क की सदर या वजीर नहीं बन सकते। किसको बनना है जो बोर्न अमेरिकन होगा? वीजा होल्डर और पासपोर्ट होल्डर्स के स्टेटस में फर्क होता है, बिल्कुल फर्क होता है। ग्रीन कार्ड है अभी आपके पास, अभी आपको ब्लू पासपोर्ट नहीं मिला, क्या आपके ऊपर लाइबिलिटीज फर्क है कि नहीं? बस यही कानून जहां बताए जाते हैं। तो शर्मिंदा होने की वजह ऐसी बातों पर कहें कि हाँ मुसलमान डिसिप्लिन्ड होते हैं। हर मुल्क की जिस तरह डिफरेंट रूल्स होते हैं, इसी तरह इस्लाम के भी हैं। इमिग्रेंट्स के लिए कुछ और चीजें होती हैं, दूसरों के लिए कुछ और होती हैं। तो ये फर्क सियासी बुनियादों पर है, इंसानी बुनियादों पर नहीं है। ये नहीं कहा जाएगा कि अब ये सारे दूसरे दर्जे के लोग हो गए, और जो इस्लाम के निजाम को समझता नहीं है आप बताइए कि वो फिर लोगों को इस्लाम समझाएगा कैसे?